ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد. اسلام میں رسومات، رواج اور مختلف سیلیبریشنز جو عید اور بقرعید کے علاوہ ہمارے کلچر میں در آئی ہیں، بعض غیر مسلموں سے، بعض شوق اور فن اور تفریح کے نام پر، اس طرح کی چیزوں کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا. وجہ اس کی ہے کہ اسلام ایک سیریس مذہب ہے جس کے اندر ہنسی مذاق، اچھل کود ان کی لمٹس ہیں. اصل میں ہم امتحانی گاہ میں بیٹھے ہیں، اس امتحان کے اندر ہمیں ساری توجہ اپنے پرچے پر دینی ہے. اس میں وقتی طور پر کچھ ہنسی مذاق تفریح بھی ہوتی رہے، لیکن قاعدے قانون کے ساتھ. منگنی جو ہمارے یہاں کہی جاتی ہے شرعاً، یہ ایک جائز چیز ہے، اور صحابہ کے زمانے میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ نکاح سے پہلے زبان دے دیتے، کوئی بات بتا دیتے تھے، کوئی اشارہ کر دیتے تھے، جس سے یہ طے ہو جاتا تھا کہ بھئی فلاں جگہ اب ہم نے لڑکی کا رشتہ کر دیا ہے. انگیجمنٹ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اور اسی کا یہ سلسلہ ہے کہ اس کے اندر بس کسی درجے میں انگیج ہو گئے، رشتہ طے ہو گیا. اگرچہ شرعی نکاح نہیں ہوا، لیکن بس ایک منسوب ہو گیا کسی سے. ایسا کرنے میں تو کوئی قباحت نہیں. اب اس کے لیے بہت سارے لوگ مختلف عنوان سے سیلیبریشن کرتے ہیں. ایسی سیلیبریشن کرنا اگر اس نیت سے ہے کہ یہ سنت ہے، تب تو ایسا کرنا ناجائز ہوگا. اگر اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے، سنت یعنی سمجھا جائے کہ ایسی سیلیبریشن کرنا سنت ہے، تب یہ بدعت ہوگی. اور اسی بنیاد پر کچھ فقہاء نے، کچھ علماء نے اس کو بدعت قرار بھی دیا ہے، اس صورت کے ساتھ کہ اس کو سنت سمجھا جا رہا ہے، اور جو چیز سنت نہ ہو اس کو سنت سمجھا جائے تو وہ دین میں انوویشن ہوتی ہے، بدعت ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر سنت سمجھے بغیر کوئی ایسی سیلیبریشن کی جائے، تو ایسی سیلیبریشن کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کو بدعت کہنا ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک دنیاوی عمل ہے اور مباح ہے، لیکن اس میں ایک شرط اور ہے کہ اس میں کوئی حرام کام نہ ہو. تو اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ اپنے تعلق کی وجہ سے، اپنی محبتوں کی وجہ سے، اور دین میں ترقی کرنے کی وجہ سے، اور لوگ آپ کو آس پاس جانتے سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کی رعایت کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، آپ بھی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو جو جو ترقی ہوتی جائے، تو اس میں یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے. لیکن اس کا درجہ، اس کو بچانے کا، یعنی اس طرح کے عمل سے، سیلیبریشن سے جو منگنی وغیرہ کے نام پر کبھی کی جاتی ہے، بشرطے کہ اس میں شریعت کی کوئی حد نہ ٹوٹے اور اس کو سنت نہ سمجھا جا رہا ہو، تو ایسی سیلیبریشن سے بچنا، یہ ایک اونچے درجے کا تقویٰ تو ہے، لیکن اگر سرکمسٹانسز ایسے نہ ہو، سچویشن یہ ہو کہ ابھی ہم بہت سارے حرام نہیں گھر سے نکال سکے ہیں، ابھی ہماری اپنی زندگی کے اندر بہت سارے فرائض، بہت سارے واجبات داخل نہیں ہو سکے ہیں، تو اتنے اونچے درجے کا تقویٰ حاصل کرنا یہ کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص الحمدللہ وہ دین پر ہوتا ہے، اور وہ باقی فرائض کا اہتمام بھی کر رہا ہوتا ہے، واجبات بھی پورے کر رہا ہوتا ہے، سنن اور نوافل ان کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح حرام سے بھی بچ رہا ہے، مکروہ تحریمی تنزیہی سے بھی بچ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کر رہا ہے. تو اب اگلا اس کا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے بھی بچے. لیکن اس میں بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس خاندان میں وہ شادی کر رہا ہے، جس برادری میں وہ ہے، وہاں پر ہر آدمی اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہا، ہر آدمی کا اسٹیج اور لیول وہ نہیں ہے کہ جو اس کا ہے، تو چنانچہ ایسی صورت میں کانفلکٹ ہوتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ اس تقویٰ کو، جو اونچے درجے کی چیز ہے، حاصل کرنے کے لیے اور بہت سارے خیر کے مواقع گنوا دیتے ہیں. تو داعی کو، جو دعوت دینے والا ہو، لوگوں کو جب کوئی بات سمجھانی اور بجھانی ہو، اچھی بات بتانی ہو، اس میں بڑی حکمت سے کام لینا چاہیے. अगर तो आपके इख्तियार में है, आपने कोशिश कर ली, समझा लिया, बुझा लिया लड़की वालों को या लड़के वालों को, जो भी आपके सामने पार्टी है, बच्चे की शादी है या बच्ची की शादी हो रही है, उनको प्यार मोहब्बत से समझाया, अच्छे तरीके से समझाया कि इन रसूमात में क्या रखा है, छोड़ो, इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर वो बजिद है और नहीं मानते तो इसको बहुत इसरार करके रोकना और मना नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक जायज़ चीज़ को आप इतने तशद्दुद से अगर रोकेंगे और सख्ती के साथ रोकेंगे तो ख़तरा इससे यह है कि आप फितने में पड़ेंगे और बाद में आप बहुत सारे गुनाहों को भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए कि जब आप मच्छर छानना शुरू कर दें और हाथी निगलते रहे किसी न किसी दर्जे में, या लोग हाथी निगल रहे हैं और आप उन पर कदगन लगाएं कि तुम मच्छर छानना शुरू कर दो, तो ये तरतीब न समझने की वजह से, तरजीहात का तायुन न करने की वजह से होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग मुस्तहब में और नवाफिल में और सुनन में इतना एहतमाम और गुलू करते हैं कि वो फराइज और हराम की पासदारी नहीं कर पाते, उसकी रियायत नहीं कर पाते। नतीजा ये है कि वो खुद भी बरकतों से महरूम रहते हैं और उनके आसपास रहने वाले लोग भी उनसे उकताते हैं, उनके ऊपर ऐसे लोगों का उनके आसपास के लोगों पर अच्छा नहीं बल्कि मनफी असर होता है। चुनाचे वो ये सारे काम भी बाज़ औक़ात इसलिए कर रहे होते हैं कि उनकी वाह वाह हो, दुनिया में पता चले कि हमने देखो इतना बड़ा स्टैंड लिया है शरीयत की वजह से। तो बाज़ औक़ात ये नफ्स की बीमारी होती है, नफ्स का रोग होता है, वो करना इसलिए होता है कि मेरी अना है। अब मैंने कह दिया कि मुझे ये नहीं करना तो अब ये नहीं करना, अब मैंने कह दिया कि इसको दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इसको नाजायज समझता हूँ तो अब नहीं होगा ये। तो इसमें बाज़ औक़ात अना, बाज़ औक़ात तकब्बुर, बाज़ औक़ात दुनिया का दिखावा कि लोग क्या कहेंगे कि हमारी शादी ऐसी कैसी हो गई। तो अगर ये बीमारियां हैं तो जारी बात है इसमें अपना इलाज करने की ज्यादा जरूरत है। एक चीज जिसको शरीयत ने हराम करार न दिया हो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये दो सूरतें उसमें होनी चाहिए, नंबर एक कि उसको सुन्नत न समझा जा रहा हो, नंबर दो उसके अंदर कोई गैर शरई काम ना हो। गैर शरई काम क्या है? मिक्स गैदरिंग ना हो, म्यूजिक और नाच गाना वगैरह ना हो। इसी तरीके से बहुत ताखीर करके रात में ऐसा ना किया जाए कि नमाज कजा होने लगे लोगों की। अगर इन चीज़ों की रियायत की जाए तो इंशाल्लाह ताला एक मुख्तसर इस तरह का फंक्शन करना, अदब लिहाज तरीके के साथ खाना खिला देना, उसमें अंगूठी अगर पहना दी गई महरम ना महरम का ख्याल करते हुए, मर्दों ने पहना दी मर्द को और औरतों ने औरतों को, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा करने में कोई कबाहत नहीं है। बल्कि अगर दूसरी तरफ से इसरार हो रहा हो तो ऐसा कर लेना चाहिए ताकि आप कुछ ऐसी चीज़ें उनकी मर्जी के मुताबिक कर लेंगे जिसमें शरीयत में गुंजाइश रखी है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप मुस्तकबिल में शादी के दिन करीब आएंगे, उन दिनों में जब चीज़ें तय होंगी तो आपके पास भी कुछ इंशाल्लाह ताला एक जिसे कहना चाहिए क्रेडिट होगा कि अब आप ये बात अप्लाई करवा सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई देखिए हमने आपकी फुला बात मानी थी, अब इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ में चाहते हैं कि इसमें आप हमारी बात मान लीजिए। थोड़ा सा एक आपको एज मिल जाता है, कभी आप थोड़ा सा प्रेशराइज भी कर सकते हैं अच्छी चीज़ों में कि आप कोई खुराफात से बच सकते हो, किसी हराम से भी बच सकते हो। खैर हराम में तो स्टैंड लेना चाहिए लेकिन उसमें भी हिकमत को छोड़ना नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात एक चीज़ की इजाज़त दे के आप पाँच छः और बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते हैं तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ दाई को किस बात की नसीहत करनी है, कहाँ इससे रुक जाना है, कहाँ एक स्टेप आगे बढ़ना है, कहाँ जो है थोड़ा सा दो तीन स्टेप पीछे हटना है, ताकि और बहुत सारे काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दिए जा सकते हों। तो ऐसे लोग कि जिनका अपने माशरे में, अपने फैमिली, अपने ख़ानदान में लीडर, दीनी लीडर की बात कर रहा हूँ कि मुक्तदा जिसे कहते हैं कि जिसको लोग फॉलो करते हो, ऐसा दर्जा ना हो, ऐसा मकाम ना हो, यानी वो मस्जिद का इमाम नहीं है, लीडर नहीं है, उलमा में से नहीं है, बुजुर्गों में से नहीं है, लोग उससे मशवरे नहीं लेते, ऐसे लोगों को इस तरह के तशद्दुद से बचना चाहिए, इस तरह के गुलू फी दीन से बचना चाहिए कि वो ज़बरदस्ती बहुत सारी दीन की मुस्तहब अमल को का सवाब हासिल करने के लिए बहुत सारी जायज कामों को भी बिलजबर रोकने की कोशिश करें ताकि वो आला दर्जे की तकवा अख्तियार करें। भाई आला दर्जे का तकवा वो इख्तियार करे कि जिसके लिए और बहुत सारे मामलात बेहतर हो चुके हों। अगर उसने भी फजर की नमाज में जमात से मजे में नमाज पढ़ने का ही एहतमाम नहीं किया, अभी भी उसका हाल ये है कि टीवी उसके घर से नहीं निकला, अभी भी उसका हाल ये है कि दाढ़ी शरई नहीं वो रख पा रहा है, अभी भी उसका हाल ये है कि सूद पे कर्जा लिया हुआ है घर में या किसी और सूरत में, अभी भी हाल ये है कि घर में बीवी बच्चों को बेटियों को शरई हिजाब और नकाब नहीं करवा सका है वो, अभी भी हाल ये है कि बेपर्दगी का रिश्तेदारों में दोस्त अहबाब आ जाते हैं तो एहतमाम जो है वो अभी सही नहीं हुआ है, इंतज़ाम नहीं हुआ कि बेपर्दगी रोकी जा सके। तो अभी इस तरह के और बहुत सारे गलत काम हैं, मोहल्ले वालों के हुकूक अदा नहीं हो रहे, रिश्तेदारों के साथ कतई ताल्लुक का मामला चल रहा है, तो बदनिगाही चल रही है जगह जगह फिल्मों टीवी के जरिए या रास्तों में तो खबरों में और बेकार की चीज़ों में जो वक्त बर्बाद किया जा रहा है सुबह शाम सियासत पे और इन मौजूआत पर उन मौजूआत में जिनसे कोई कंसर्न नहीं है उनमें अपना वक्त ज़ाया किया जा रहा है। जब इंसान की ज़िंदगी में इतनी सारी खराबियाँ इस तरह की हो, बद अखलाकियाँ हों, अपने अंदर किबर हो, हसद हो, दूसरों से बुग्ज़ हो, इनाद हो और ऐसी कई एक बीमारियां दिल के अंदर नाशुकरापन हो, बीवी से बदतमीजी करने का या शोहर से बदतमीजी करने का मामला हो, बेअदबी से बात करने का मामला हो, बड़ों की रिस्पेक्ट ना हो, छोटों पर शफ़क़त ना हो, इसी तरीके से गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता हो और उस पर काबू न रहता हो, गलत जगहों पर आता हो, तो ये और ऐसे बहुत सारे गुनाह, ऐसी बहुत सारी खराबियाँ हमारे अंदर इतनी मौजूद हैं कि अभी हम इनसे अपने आप को पाक साफ करने की फिक्र करें या पहले जाके मुस्तहबात और नवाफिल के अहतमाम में लगें। उसका यह मतलब नहीं है कि मुस्तहब की अहमियत नहीं है और नवाफिल की अहमियत नहीं है, बहुत अहमियत है और बहुत अच्छी बात है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा तकवा अख्तियार करे, लेकिन प्रायोरिटीज़ भी चेक करें, अपने ऊपर शिद्दत करनी चाहिए, अपने ऊपर रखिए कि मैं ये भी सुन्नत नहीं छोड़ूंगा, ये हराम भी नहीं करूँगा, ये नफली काम भी ज़रूर करूँगा, ये ज़रूर करना चाहिए, लेकिन दूसरों को लीव वे देना चाहिए, दूसरों को रिलैक्सेशन देना चाहिए, उनके बारे में आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि देखो भाई उनका मामला अल्लाह ने चाहा तो किसी एक नेकी से अल्लाह संवार देंगे, मेरा क्या होगा, मेरी परेशानी है, तो मैं अपनी फिक्र करूँ, दूसरों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो दूसरों के बारे में बहुत तशद्दुद नहीं करना चाहिए। अब लेकिन ये होता है कि बाप ये कहता है मेरे घर की शादी है, तो उसमें भी ये जहन में रखना चाहिए कि घर की शादी तो है, आपकी बेटी है या आपका बेटा है, लेकिन उसमें ये ख्याल होना चाहिए कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, फी ज़माना नौजवान बेटा बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा रिश्ते आसानी से अवेलेबल नहीं होते, तो अगर इस वजह से हमने एक बड़ा नुकसान कर दिया कि बेटी की शादी खुदा खास्ता इस वजह से छूट गई या बेटी की शादी छूट गई, टूट गया रिश्ता इस बुनियाद पर, इज्जत की वजह से, या शादी हो गई आपकी कंडीशन पे पर वो सेरेमनी नहीं की गई, तो दोनों ऑप्शन है ना, बहुत पॉसिबल है कि वो आपकी बात ना माने और इसकी वजह से वो रिश्ता तोड़ ले। अगर ऐसा किया उन्होंने तो क्या होगा, आप उस बच्चे को मजीद चंद महीने, साल, दो साल, जब तक अगला रिश्ता नहीं मिलता, उसकी बुनियादी ज़रूरत, बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं। तो एक नफिल या मुस्तहब काम के लिए या एक आला दर्जे की चीज़ को आखिर हासिल करने के लिए जिसके करने में शरण कबाहत नहीं थी, आपने और बहुत सारे गुनाहों में लोगों को फंसा दिया। अब उसके बाद गुनाहों में, ख्यालात में अल्लाह माफ़ फरमाए जिना की तरफ चला जाए बेटा या बेटी, तो आप उसको धकेल रहे गोया अपनी एक अनाशान इस वजह से या आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड तकवा की वजह से, अपने तई आपने जो समझ लिया कि मुझे ऐसा करना है, तो ये सब मुनासिब नहीं है। अब दूसरी बात इसके अलावा ये है कि ये तो उस सूरत में कि जब उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, न तोड़ा और आपकी बात मान ली, तो अब क्या होगा कि सारी जिंदगी इसका ताना वो बेटी अपने घर जाके सुनेगी, वो बेटा अपने ससुराल में सुनेगा या बीवी से सुनेगा, तुम्हारे अब्बा ने तो हमें ये नहीं करने दिया, तुम्हारे यहाँ तो ये नहीं होने दिया, यूँ नहीं हो, इस बुनियाद पर उसको सुनने सुनाने का जो मौका मिलेगा छोटी सी एक बात पर, तो आप सबब बन रहे हैं अपनी ही बेटी या अपने ही बेटे के घर में फसाद डालने का या पड़वाने का, आपने पहला बीज बो दिया उस चीज़ के लिए कि जिसमें शरण आपके लिए गुंजाइश थी। तो इसलिए ऐसे मामलात में हमेशा उलमा से, बड़ों से, ऐसे लोगों से जिनके पास दीन का इल्म भी है और उनके पास साथ साथ विजडम भी है और इन मामलात को वो समझते हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। ऐसे शख्स से नहीं कि जिसके पास खाली इल्म हो और ऐसे शख्स से भी नहीं कि जिसके पास खाली विजडम हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इल्म भी हो और विजडम भी तब इंशाल्लाह ताला मुनासिब मशवरा मिलता है। केस टू केस ये वेरी करता है। जैसे मैंने कहा, जो लोग लीडर हों, मुक्तदा हों, अमीर हों, इमाम हों, उलमा हों, उनको तो इसमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि उनको एग्जाम्पल्स सेट करनी होती हैं। लेकिन आम आदमी, हमारे आपके जैसे दर्जे का हल्का सा आदमी, तो हमें अपने दर्जे पर रहना चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए, कहना चाहिए अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, इस गुंजाइश से फ़ायदा उठा लेता हूँ ताकि मैं और हराम से बचूँ। लेकिन हराम की जहाँ बात है, वहाँ स्टैंड लें, वहाँ स्टैंड लें। लेकिन इनमें स्टैंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ऐसी कोई सेलिब्रेशन कहीं होती है, आप उसको सादगी से करने की बात कीजिए, आप उसको सिंप्लीफाई तरीके से करने की बात कीजिए। आप ये कहिए कि भाई देखो, इसमें ये हराम काम, उसे बच जाओ, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी बात का वजन भी रहेगा, हिकमत भी रहेगी, काम भी अच्छा हो जाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो आगे आप बहुत सारी चीज़ों को इम्पोज भी कर सकेंगे प्यार मोहब्बत के साथ। लेकिन कीजिए सिर्फ अल्लाह के लिए, अपनी नाक, अपने अना, अपने नाम की वजह से नहीं, वरना आपका ये अमल दुनिया ही में रह जाएगा और उसकी वजह से बेबरकती ज़्यादा फैलेगी। तो आप तो समझ रहे होंगे कि आपने अल्लाह को राज़ी किया, किया नहीं होगा, इसलिए कि किया आपने अपनी ज़ात को राज़ी करने के लिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।